ये असल में एक फल है इंडिविजुअलिज्म की, जो एक ये लिबरलिज्म सेकुलरिज्म का जो एक पूरे का पूरा फलसफा है, जिसका एक फल है। क्योंकि
अच्छा
आपने
एक्सप्लेन
काफ़ी अच्छे
किया।
तरीके से इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी, जो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें डेवलप हुई, वो भी बता दिए। मैं तो इसको बेसिकली अपनी, क्योंकि हमारे प्राइमरी जो ऑडियंस है मुसलमान है, तो मैं तो उनके एंगल से उनको बताना चाह रहा हूँ कि जो एक फलसफा है कि इंसान अपने ऊपर खुद सॉवरन है, ह्यूमन बीइंग इज अ सॉवरन ओवर हिमसेल्फ, कि वो अपने फैसले खुद कर सकता है और उसको कोई बाउंड्री डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये बुनियादी फलसफा है। क्योंकि ये फलसफा हमारे अंदर चाहे एलजीबीटी फॉर्म में ना हो, लेकिन हम मुसलमानों में किसी ना किसी और फॉर्म में है। तो ये जो डिवाइन गाइडेंस की जो नीड है ना, जैसे आपने कहा कि फ्रॉइड जो है वो सेक्सुअलिटी को लेकर काफी हर चीज के अंदर, एक हम कहते हैं हर चीज के अंदर उन्होंने इस मामले को घुसा दिया और इसी नुक्ता नजर से वो देखते हैं। तो वही होता है कि इंसानों के पास चीजों को बैलेंस आउट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कैसे हम वो एक तरफ जाते हैं और उसी में फिर आगे चले जाते हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो एक कैसे मतलब एक तवाजुन कायम कर सके, कि और कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते वो राइट और रॉन्ग के दरमियान। वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा एक ही करेंगे कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, ठीक है। उनके पास शायद मैक्सिमम यही होगा कि अच्छा है क्या बुरा है, और वो अच्छा बुरा डेफिनेटली वो इंसान के अपने जैसे उसको महसूस हो रहा है या किसको उसे इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये एक तरह का उन्होंने अपना एक रफ सा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली ये क्राइटेरिया भी बाकी चीज़ों में उनको हेल्प नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर बच्चों की तरबियत के मामले पे, अगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इसे कि आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी अगर बच्चे को आपने टाइम पे सुनाना है तो बच्चे को तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं वक्त पर सोऊं, वो तो चाहता है मेरी लिबर्टी को खुला छोड़ा जाए। तो वहां पे जाके उनको क्राइटेरिया कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि उनके पास डिवाइन गाइडेंस के अलावा इंसान जब अपने नफ्स के डिजायर्स को, शहवात को फॉलो करता है, तो उसके पास वो फिर एक बैलेंस खत्म हो जाता है। जी उमर भाई,
जी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मैं अब आहत भाई की तरफ जाऊंगा कि आप क्या इसके बारे में, जो इसकी बुनियादी असास है या जो मसला है उसके बारे में आप क्या हमें गाइडलाइन देंगे।
अस्सलाम वालेकुम।
मैं तुम्हें इसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि मेरे ख्याल में इसकी दो डिविजन्स हैं। एक वो डिवीजन है जो कि पस पर्दा है, जिनका कोई और मकसद है इस चीज को हासिल करने के लिए, जो सारों को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। मगर जो आम लेवल है ना, वो जितना इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, वो भी इसको लेकर उतना ही अभी कंफ्यूज है। हाल तो उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उसकी एक मिसाल ये दे देता हूँ कि ये LGBTQ जो है, वैसे अब LGBTQ भी नहीं रहा, पहले LG से स्टार्ट हुआ था, फिर LGBT तक गया, फिर LGBT में Q ऐड किया, अब इन्होंने I ऐड किया, फिर उसके बाद LGBTQIA हो चुका है, जिसमें हाँ आपने सिर्फ सेक्सुअल वगैरह की बात की ना, इसमें लास्ट है asexual, जिसमें उन लोगों को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो पॉइंट इज कि ऑन द गो इसको वक्त के साथ साथ चेंज कर रहे हैं, और इन्होंने इंसान की फ्रीडम के पॉइंट को सिर्फ इस तरह एक्सप्लॉइट किया कि फ्रीडम के लिए इंसान हर काम करता है, पहले आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ेंगी सब कुछ की, उन्होंने सारा फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ उसे बॉडी की तरफ लगा दिया, बॉडी की तरफ और आपकी सेक्सुअल डिजायर्स की तरफ, चाहे वो हैं या नहीं है। अब उसकी बेस पे ऑन द गो ये बनाए जा रहे हैं, इसलिए खुद भी सारे कंफ्यूज्ड बैठे हुए, इनके पास कोई खास एजेंडा नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दो लेयर्स हैं, एक पस पर्दा लेयर है जो किसी बात को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और एक है कि वो जब कंट्रोल आम लोगों के हाथ में दे दिया तो उनको खुद नहीं पता अभी हमने करना क्या। वो इतने अरसे से कुछ लड़ रहे हैं, 100 साल पहले से स्विम सूट की औरतों की तहरीक शुरू हुई थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़ता, तो ये बहुत कुछ जो है इन्हें खुद नहीं पता, ऑन द गो बना रहे। और ऑन द गो बनाने का ये तरीका, जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं कुछ नहीं है, तो आप हलाकत की तरफ जाते हैं।
बिल्कुल सही है, आपने सही पॉइंट रेज की है, और मैं भी इसको इसी तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों ने सामने बात की है। जो बुनियादी तसव्वुर है ना, जिस तरह डॉक्टर फातिमा ने बात किया, देखिए बुनियादी तसव्वुर जो मगरबी तसव्वुर के आज़ादी के तसव्वुर को जो लोग लेके आए हैं, जो उसका बेसिक एलिमेंट कहा जाता है, जो मगरब में नज़रिया है, जो यानी कि एक बुनियादी नज़रिया होता है ना, हर हर जो मुआशरा होता है जिसके ऊपर चीज़ खड़ी होती है, जिस पे कानून बनते हैं, जिसको वो आगे फैलाते हैं, उसको नशर इशात करते हैं, वो बुनियादी अखलाकी कदर जो इन लोगों की है ना, वो आज़ादी का तसव्वुर है। समझाया जाता है कि अगर हम आज़ादी लोगों को, जिस तरह फ्री मार्केट का कंसेप्ट है ना, वो इंसानों में भी फ्री वे से लिविंग का जो है ना कंसेप्ट लेके आते हैं, तो ये एक तो ये इसके जो हम नतायज देखते हैं ना कि हमारा प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है इस चीज़ से, वो मज़हब, क्योंकि हम लोग, हमारा जो दीन है वो हमें इस तरीके से गाइड नहीं करता ना। हमारा जो दीन है हमें ये कहता है कि बुनियादी जो हमारा कदर है ना, जिसके ऊपर हमारा पूरा कल्चर या हमारा पूरा चीज़ खड़ी है, वो है हया असल में, जिसको मैं समझता हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है, और हमारा इनसे कन्फ्लिक्ट ऑफ जो नज़रिया है वो यही है। तो असास एक तो ये है ना कि हम नतायज देख के फिर सवालात करते हैं कि भाई ये हमें ख़राब करना चाहते हैं, ये है और वो। मैं कहता हूँ कि वो असल में जो उनका नज़रिया है ना, वो उसको उसकी नशोनुमा चाहते हैं। और इस पे मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि इसकी फिर हदूद नहीं है ना, अगर उस नज़रिए जो असास ये बताई जाती है, क्योंकि वो ऐसा बाउंड्री लेस कंसेप्ट है, अगर आप इसमें चले जाएं तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे ना। लोगों ने काफ़ी इस पे बहसें भी की हैं कि भाई इसकी फिर आप लिमिट क्या तय करेंगे, अगर आप लोगों को मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो इसका एंड इफेक्ट में नुकसान जो हैं, हम मज़हब के परस्पेक्टिव से हट के भी अगर देखें ना, तो उसके नुकसान जो है ना इरिवर्सिबल नुकसान हैं इसके। ठीक है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि ख़ानदान का निज़ाम टूट रहा है, और ये इनको भी पता है कि ख़ानदान का निज़ाम टूट रहा है, तो उससे ये है कि ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम्स है ना, और ख़ुद पसंदी डिवेलप हो रही है। तो इस मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी नज़रियाती असास हैं, और उसको ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं। हम मगरबी जो तहजीब है वो बेहतर है दूसरों से, ये असल में इसका बेसिक इसका है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और क्या ये एक नया मसला है, यानी ये जो हमारे सामने आया है, क्या ये पहले भी था दुनिया के कैनवस के ऊपर? क्या इसमें जो हमारी कुरान है, जो मजहबी हिस्ट्री है उसके बारे में, या जो वैसे हिस्ट्री लिखी गई है उसके बारे में क्या कहता है, क्या ये नया मसला है?
इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा जो पिछले हमारी गुफ्तगू थी उसके ऊपर, कि जो आज़ादी का इनका तसव्वुर है वो उसको तो बहुत डेफिनेटली वो करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, उनके अकीदे का हिस्सा है। जैसा हमारी एक ईमानियात है, सेकुलर भी ईमानियात हैं, मतलब दे ऑल्सो हैव अ क्रीड, लिबरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, सारे उसकी डायमेंशन आर डिफरेंट। जो लेकिन उसका जो जो सोर्स है ना, हमारी सोर्स तो डिवाइन है। ठीक है, इनकी जो सोर्स है ये इनकी ख्वाहिश नफ्स है, जो शहवात है, तो जो डिज़ायर्स हैं ये वहाँ से चीज़ें डेवलप करते हैं, और फिर उसमें कई दफ़ा नेचर और का आर्गूमेंट भी लेकर आते हैं कि चीज़ नेचुरल भी है, लेकिन एक्चुअली नेचर इनका सोर्स नहीं है। सोर्स इनका एक्चुअली इज द ह्यूमन डिज़ायर, जो ह्यूमन डिज़ायर है उस वो इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ इन सम सेंस। उसमें डेफिनेटली उसमें आगे पूरी एक जंग शुरू होगी डिज़ायर्स के दरमियान, एक बंदे के डिज़ायर की दूसरे डिज़ायर के दरमियान खिलाफ, और वो फिर पूरी कश्मकश डेवलप होगी जिसके अंदर डिफरेंट थिंकर्स आके उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं और वो अपना पूरा एक निज़ाम तरतीब देते हैं, निज़ाम फिक्र। अच्छा, तो खैर अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आप कह रहे थे, ये हमें भी बिल्कुल कुरान मजीद से मालूम है कि सबसे पहले जिस जो कौम इस मामले में मुबतला हुई वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में तो आराफ में फरमाया कि उन लोगों ने यह काम किया कि वो औरतों को छोड़ के जो मर्द हैं उनकी तरफ इंटरेस्टेड होते थे, और मतलब सेक्सुअली इंटरेस्टेड होते थे, और अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुमने तो वो काम किया तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं किया था, तुम बहुत ज़्यादा हंसे भर रहे हो। तो ये जो मर्ज है, इसको आप एक साइकोलॉजिकल डिजीज सेंस में अगर मैं कहूँ कि ये जो मर्ज है ये काफ़ी पुराना है, कि इंसान जो है वो अपने नफ्स को ख्वाहिश को किसी भी तरफ मोड़ सकता है, और वो ये काम काफ़ी देर से हो रहा है। कई दफ़ा ये सोसाइटी में प्रोमिनेंट हो जाता है, कई दफ़ा अंडर द कवर चला जाता है। तो अभी तो एक मूवमेंट बन के, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ों का सहारा लिया है एक्चुअली, इसकी वजह से एक मूवमेंट के फॉर्म में आ गई है। अदरवाइज ये हमारे तारीख में कभी भी चीज़ गायब नहीं रही, कोई भी सोसाइटी, चाहे वो इस्लामी माशरा हो चाहे वो गैर इस्लामी माशरा हो, वो इससे गायब नहीं रहा। इन्होंने एक्चुअली अपने लिए इनकी 4-5 बेसिक असर्शंस हैं, कुछ क्लेम्स हैं। एक तो ये है कि जिस तरह आपको कहते हैं हम एक मनॉरिटी हैं, वी आर ए मनॉरिटी, तो हमें जो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है आप हमें उससे बचाएं, मतलब इस किस्म के जो वो एक मिनॉरिटी वाला आर्गूमेंट है वो अपने हक में लेते हैं कि हमारे हकूक का तहफ़ किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कह रहा था ना कि आर्गूमेंट ये होता है कि इंडिविजुअल के राइट्स हैं, सोसाइटी के भी कुछ राइट्स हैं, और अगर मेजोरिटी लोग तो ऐसे नहीं है, मेजोरिटी लोग तो एलजीबीटीक्यू के अंदर फॉलो नहीं करते ना, तो कहते हैं मिनॉरिटी, जो मेजोरिटी हमारे हकूक सॉल्व कर लेगी, तो इसलिए वो इस तरह माइनॉरिटी वाला राइट का एक प्ली लेते हैं, ताकि वो कहते हैं हमारे खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर लेट से कोई मस्जिद है यूके में और वो किसी एलजीबीटीक्यू पर्सन को हायर नहीं करती, तो वो पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उस मस्जिद को सू कर सकता है, बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग जस्ट ड्यू टू द जेंडर आइडेंटिटी, तो ये उनको कानूनी तहफ़ हासिल है क्योंकि उन्होंने ये वाली एक पील हुई है. और सेकेंडली भी उनका एक आर्गूमेंट होता है कि जिस तरह से नेचुरल है कि एनिमल्स के अंदर भी इसी किस्म की हरकत तो सकनात पाई जाती हैं. और थर्ड वो जो आप हम पहले के बाद फ्रीडम है जी, कि इंसान का फ्रीडम है, अगर दो कंसल्टिंग एडल्ट हैं और वो अपनी प्राइवेसी में कर रहे हैं घर में कुछ भी, तो किसी को क्या मसला है कि वो किसी को नुकसान नहीं से पहुँच रहा मुआशरे को ना, तो वो उसको इस तरह से देखते हैं. और डेफिनेटली एक चौथा आर्गूमेंट है जो काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो इसी तरह ख्याल नहीं करते. वो कहते हैं कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली बॉर्न ही इस तरीके से होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप होता है इस किस्म का. तो ये चार इनके बुनियादी जो हैं क्लेम्स हैं या असर्शंस हैं, इसके अंदर इन्होंने अपने फलसफे को महफूज कर रहे हैं जिस तरीके से.
डॉक्टर साहब से इसमें इनपुट लेते हैं, ये इनके माशाल्लाह फील्ड भी है.
बिल्कुल इसी तरह से है. एक तो जैसे इन्होंने बताया कि उमर भाई ने कुछ कहा कि ये मतलब जो साइकोलॉजिकल डिजीज इन्होंने कहा, तो आजकल तो खैर नहीं कहते अब ये चीज, मतलब कि अगर मैं अपनी जुबान में कहूँ तो मैं कहूँगी कि हराम हो चुकी है. लेकिन फ्यू डेकेड्स अगो तक थेरेपी दी जाती थी उन बच्चों को जिनको जेंडर डिस्फोरिया होता था या जिनको लगता था कि हम होमोसेक्सुअलिटी की तरफ चले जाए. तो मतलब अगर एडोलेसेंट्स होते थे तो फिर उन्हें पेरेंट्स जो हैं वो थेरेपिस्ट के पास ले जाते थे, थेरेपी होती थी और मतलब उन्हें समझाया जाता था जैसे हम लोग भी समझाते हैं अपने बच्चों को हजारों चीजों पर. तो मतलब ये चीज प्रिवेंट की जाती थी. लेकिन अब ये जो है जो DSM होता है, जो डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल होता है मेंटल डिजीज का, और बड़ी खतरनाक चीज होती है, उसमें हम सबको ही कुछ ना कुछ निकल आता है. लेकिन उसमें से ये चीज अब निकाल दी गई है और मतलब इसको अब ये दिस इज फॉरबिडन, दिस इज अगेंस्ट लॉ कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि आई एम फीलिंग लाइक चेंजिंग माई जेंडर आइडेंटिटी और मतलब के, तो आप उसे कुछ नहीं कह सकते ना, उसकी कोई थेरेपी नहीं होनी चाहिए. इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस एंड दैट पर्सन डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेडिकल अटेंशन. उसको इमोशनल और एक फैमिली की सपोर्ट जरूर चाहिए होगी, लेकिन उसे ये नहीं चाहिए होगा कि उसे कोई थेरेपी दें या हम उसे कोई बीमारी समझें. तो एक तो ये इस चीज के बारे में नजरिया बिल्कुल खत्म हो गया. दूसरा यही जो माइनॉरिटी, और इस पे फिर एक मैं ये कहती हूँ कि जो भी मूवमेंट आती है, ये मैंने वैसे कुछ स्कॉलर्स को भी कहते हुए सुना है और फिर अगर हम ऑब्जर्व करें तो बात ठीक लगती है कि जब कोई मूवमेंट आती है, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म भी एक मूवमेंट है और भी बहुत सारी है, तो इसी तरह LGBTQ भी एक मूवमेंट है, लेकिन इसमें एक रिएक्शनरी एलिमेंट भी बहुत ज्यादा होता है. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटीज में, खैर ट्रेडिशनल मुस्लिम सोसाइटीज में मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत ज्यादा मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें इतना जुल्म वगैरह नहीं होता था. लेकिन जब कॉलोनियलिज्म वगैरह में इनके ऊपर फिर बहुत जुल्म हुआ, इनको बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज किया गया, तो एक वो रिएक्शन भी अब बहुत ज्यादा है. और आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी जो है इस्लाम में भी अब बहुत है कि जी बहुत सख्ती की गई लोगों पर, और लेकिन क्रिश्चियनिटी का अगर और इस्लाम का मुवाजना करें तो ज्यादातर ये सामने आता है, अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से इसको प्रूव किया जाएगा, लेकिन कि क्रिश्चियनिटी ने बहुत ज्यादा होल्ड रखा हुआ था और ह्यूमंस को जिनको वो करना चाहते थे साइड पर उनको वो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज करते थे और जुल्म भी करते थे. तो एक इसमें रिएक्शन का भी एलिमेंट है कि मतलब कि आप
जो है ना, एक गलती थी उसको एक और गलती से बदलना चाहते हैं ये लोग.
बिल्कुल. तो अब
एक्सट्रीमिज्म तो नहीं होता ना
जी, लेकिन इसमें अभी एक रिएक्शन का एलिमेंट है कि अब लेकिन मुझे जिस बात से अब रिसेंटली मुझे ये बात रियलाइज हुई, और मतलब कि पहले बिल्कुल इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी. हम यही कहते हैं कि हम किसी से नफरत नहीं करते, और जाहिर है कि एक सिन तो ये है, फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई और हम मतलब हमारा प्यारा इस सिन में ना पड़े, लेकिन हम नफरत नहीं करते. लेकिन अब मुझे रिसेंटली ये रियलाइज हुआ, कुछ वाकयात भी हुए, कि अब जो इनके मूवमेंट में ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग नॉर्मल है, हम अच्छे लोग होते हैं, और जो जो स्ट्रेट होते हैं, स्पेशली जो स्ट्रेट मैन होते हैं, मतलब कि मैंने कहीं पढ़ा था कि दे आर द वर्स्ट स्ट्रीट. तो मतलब कि वो जो स्ट्रेट लोग हैं वो एबनॉर्मल है. तो जब ये एक स्टैंडर्ड जब चेंज हो जाए ना, तो फिर बंदे को खौफ आना शुरू हो जाता है. वो एक मोमेंट होता है कि बंदा कहता है कि अब तो मैं भी पकड़ा गया हूँ इसमें. लेकिन इसमें फिर वो आपको लिटरली ऐसा है कि हमें एज अ लोअर पर्सन देखा जाता है जो स्ट्रेट होते हैं लोग, के मतलब इन्हें इतनी तमीज और इतनी अकल नहीं है कि जो चीज हमेशा से होती है उसको ये बुरा समझते हैं, और मतलब इनको कॉर्नर किया जाए और इनको सबक सिखाया जाए कि ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं करते। और अब ये जो इन्होंने हायर करने की बात की, ये बहुत ज्यादा हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये मस्ट है अब कि आपके पास ऐसे लोग हों। तो जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह स्कूल जाता है, तो उसके कुछ टीचर्स में जो ओपनली इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि चलें घर में, घर की प्राइवेसी में अगर जो भी हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो हो, लेकिन वो इस चीज को प्रोफेस करते हैं। अब इसके एक टीचर हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे हेयर भी कह सकते हैं, आप मुझे फ्राउ भी कह सकते हैं। और फिर वो किसी दिन जो है वो एज अ वुमन ड्रेस करते हैं और किसी दिन वो एज अ मैन ड्रेस करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इतना ओपनली मुझे सब कहना चाहिए कि नहीं, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर
गोइंग, रियलिटी, एंड वी विल कम टू दिस साइड आल्सो। हमारा जो अभी मेन
कुछ
मेन सवाल था वो ये था कि भी हां बोले,
मैं डॉक्टर फातिमा की बात को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम टॉपिक में थोड़ा आगे जाएं।
मैं जानता हूं कि ये मसला वहां पे भी मौजूद है, उसको ये कि उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, उसको उस तरीके से